ಸುಗುಣ ಸಮಗ್ಗೆ ಪಂಚವಿಹಾಚಾರ ಕರಣ ಸಂದರ್ಶಿ ಶಿಷ್ಯಾನುಗ್ರಹ ಕುಶಲಿ ಧಮ್ಮಾಯಿರಿಯ ಸದಾ ವಂದೇ ಗುರುಭಕ್ತಿ ಸಂಜಮೇನಯ ತರಂತಿ ಸಂಸಾರ ಸಾಯರಂ ಘೋರಂ ಛಿನ್ನಂತಿ ಅಟ್ಟಕಮ್ಮಂ ಜಮ್ಮನ ಮರಣಂ ನ ಪಾವೇಂತಿ ಈ ನಿತ್ಯಂ ಮೃತಮಂತ್ರ ಹೋಮ ನಿರಿತ ಧ್ಯಾನಾಗ್ನಿಹೂತ್ರಾಕುಲ ಷಟ್ಕರ್ಮಾವೃತಸ್ತಪೋಧನದನಾ ಸಾಧು ಪ್ರಿಯಾ ಸಾಧವ ಶೀಲ ಪ್ರಾವರಣ ಗುಣ ಪ್ರಹರಣ ಚಂದ್ರಾರ್ಗತೇ ಜ್ಯೋತಿಕಾ ಮೋಕ್ಷದ್ವಾರ ಕಪಾಟ ಪಾಠನ ಭಟಾ ಪ್ರೀಣಂತು ಮಾಂ ಸಾಧವ ಗುರುವ ಪಾಂತು ನೋ ನಿತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನದರ್ಶನ ನಾಯಕಾಃ ಚಾರಿತ್ರಾರಣವ ಗಂಭೀರಾ ಮೋಕ್ಷ ಮಾರ್ಗೋಪದೇಶಕಾಃ ಇಚ್ಛಾಮಂತೆ ಆಯುರ ಭಕ್ತಿ ಕಾಜುಗುಕೋತ ಸಾಲೋಜಿಯಂ ಸಮನಾನ್ ಸಂವದಂಸನ್ ಸಮಚರ್ಯುತ್ತಾನ ಪಂಚವಿ ಆಚಾರಾನ ಆಯರಾನ ಆಯರಾದಿ ಸುಧನಾನುವದೇಶಾನುವಜ್ಯಾನಂ ತಿರಿಯನೂನು ಪಾಲಡಯಾನು ಸವಸಾನಂ ಸಯಾನ ಚಕಲ ಮಂಚೀಂ ಪೂಜೈ ಮುಂದಾನಮಂ ಸಾಮಿ ದುಃಖಕೋ ಕಮಕೋ ಬೋಹಿಲಾ ಸುಗೈಗಮನಂ ಸಮಾಯಮಿರಣಂ ಜಿನೂನ್ ಸಂಪತ್ಯೂ ಮಜ್ಜಂ ವಂದಿತ್ತು ಸವ್ವಸಿದ್ಧೇ ಧುವಮಚಲ ಮನೋವಂ ಗಯಂ ಪತ್ತಿ ಓಚ್ಛಾಮಿ ಸಮಯ ಪಾವುಡ ಮಿನವು ಸುಧುಕಿ ಬಲಿ ಭಣಿದಂ ಪರದ್ರವ್ಯ ಕಾ ಕರ್ತಾ ಪರದ್ರವ್ಯ ಕಭಿ ನಹೀ ಹೋ ಸಕ್ತಾ ಪರದ್ರವ್ಯ ಕಾ ಕರ್ತಾ ನಹೀ ಹೋ ಸಕ್ತಾ ತೋ ಪರ ಕಾ ಕರ್ಮ ಭೀ ನಹೀ ಹೋ ಸಕ್ತಾ ಪರ ಕಾ ಕರಣ ಭೀ ನಹೀ ಹೋ ಸಕ್ತಾ ಔರ್ ಪರ ಕಿ ಕ್ರಿಯಾ ಭೀ ಅಪನೆ ಭೀತರ ನಹೀ ಹೋ ಸಕ್ತಿ ಇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಕೋಯಿ ಭೀ ದ್ರವ್ಯ ಪರದ್ರವ್ಯ ಕೆ ಸಾಥ್ उपादान की अपेक्षा से कोई संबंध नहीं रखता। इसके बावजूद भी ये इसलिए कहना पड़ रहा है, कुछ ऐसा लगता है जैसे पर का कर्ता हम बन जाते हैं, पर हमारा कर्म बन सकता है, पर में हमारी क्रियाएं जा सकती हैं, लेन देन इसका हो सकता है। इस प्रकार की जो धारणा है उस धारणा को छुड़वाने के लिए और वस्तुस्थिति क्या है इसको बताने के लिए बार बार वो बात कही जा रही है। एक सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि उपादानकर्ता स्वयं का है, दूसरे का नहीं है। तो यह दो बहुत बड़ा जो विश्व है, इसकी रचना और इसका संचालन, इसका जो अनाहत रूप से चलना, ये सब कैसा संभव है, इस संबंध को समझने के लिए आचार्य आगे कुछ गाथाएं दे रहे हैं, जिसको एक प्रकार से निमित्त नैमित्तिक संबंध बोलते हैं। एक निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा है जैसे कर्ता और कर्म का है, ऐसा ही लग जाता है। यह यदि समझ में आ जाए तो दुनिया के जो समस्या हैं वो सारी की सारी समस्या समझ में आ सकती। दुनिया में केवल संघर्ष है तो कर्ता और कर्म, यह संबंध क्या है, निमित्त नैमित्तिक संबंध क्या है, नहीं समझने का ही एक परिणाम। केवल उपादान के ऊपर ही डिपेंड हो जाता, वह भी मात खा जाता है, और केवल निमित्त के ऊपर ही जो आधारित हो जाता है तो वह भी मात खा जाता है। वस्तुतः क्या है, कहां तक हमारा पुरुषार्थ, कहां तक हमारा यह कार्य के परिधि हमारी है, यही एक समझना गूढ़ रहस्य की बात है। और यह समझ में आने के उपरांत संसारी प्राणी को ये तुम ये छोड़ो ये छोड़ो ये छोड़ो कहने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि आपको स्वास्थ्य इष्ट है, स्वास्थ्य क्यों बिगड़ गए यह ज्ञान हो जाए, फिर दवाई लो कहने की आवश्यकता नहीं, ये छोड़ो कहने की आवश्यकता नहीं, इतने ही बार खाओ ये कहने की आवश्यकता नहीं। यदि आरोग्य इष्ट है तो बच्चों की बात अलग है, 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त के उपरांत बच्चे नहीं रहते, ध्यान रखना, वो जगत पूज बनने की क्षमता रखते हैं, इसलिए जैसे आप चाहते उसके अनुसार स्वतंत्र है। मनाने से कोई मान नहीं सकता, हाउ भले कह दे लेकिन भीतर ना कहता है। हाउ ना मान जाओ ना, जाओ जाओ ना। तो ये यही तो है, यद्यपि सुन लो ज्यादा नहीं, यद्यपि जीव पुद्गल परिणाम यो हो अन्योन निमित्त मात्रत्वम अस्ति तथापि निश्चयेन तयोर न कर्तृकर्म भावम इति आवेदयति। यद्यपि जीव और पुद्गलों के परिणामों के साथ आपस में निमित्त मात्रत्व है, निमित्त क्या है ये समझ में आ जाए, ये समझ में आ जाएगा, निमित्त क्या है ये समझ में आएगा, उपादान क्या है ये समझ में आएगा। ये गाथाओं से पहले कह दूं तो कह देता हूं, मान लो किसी ने प्रश्न किया, महाराज पर का कर्ता तो कोई हो नहीं सकता, ऐसा किसने पूछा, पर का कर्ता कोई हो तो नहीं सकता ऐसा कहा, फिर क्यों ऐसा माना जाता है? माना नहीं जाता, और यदि माना जाता तो उसका रहस्य है। क्या है रहस्य? बिल्कुल पृथक पृथक द्रव्य है, इसमें क्या रहस्य है? ऐसा कहा। तो आपने प्रश्न किया, हाँ बिल्कुल मेरा यह प्रश्न है, आप बता दो। यही बात है कि आपने प्रश्न किया, आपके प्रश्न के ऊपर मैं बताऊंगा, कुछ बात समझ में आ जाएगी क्या? बताओ। हाँ क्यों नहीं आए? तो इसी का नाम तो निमित्त करता है, बस इतना ही तो है, इतना ही। यदि यदि उपदेश के माध्यम से आपको समझ में बात आ रही है, इतना तो स्वीकार कर लेना चाहिए, नहीं आए तो नहीं। यदि आप प्रश्न किसी के सामने रखते हैं और आपके प्रश्न रखा जा सकता, उनके लिए प्रश्न के कारण कुछ दिमाग में बात आ सकती है, तो इतना ना निमित्त तो स्वीकार कर लेना चाहिए। महाराज ये तो ये क्या, आप सामने सामने कह रहे, आप लिखो दूसरे को कुछ समझ में आ जाए, समझ लेना कि इसका निमित्त कर्तव्य तो है, कितना है ये बात अलग है कि वह मूर्ति को तो आप सिखा नहीं सकेंगे, जड़ को तो आप सिखा नहीं सकेंगे, जड़ के सामने आप प्रश्न रख नहीं सकते, इतने तो आपने समझ करके रखा है। हाँ नहीं, जड़ के सामने तो नहीं रखा, समझदार के सामने रखा है तो वह समझदारी आपके पास है, और उस शब्द के उत्तर, उस प्रश्न के उत्तर आपको समझ में बात आ सकती है तो मान लो, नहीं आती है तो ईमानदारी के साथ स्वीकार कर लेना कि भीतर कुछ हुआ है क्या नहीं, कुछ होता है क्या नहीं। ये बिल्कुल ठीक है, उपयोग हमारा उस ओर चला जाता है तभी कार्य होता है, लेकिन उपयोग जाकर के भी यदि निमित्त अपने कम ढंग से काम नहीं करता है तो वह उपादान अकेला नहीं ढल सकता, इसी को निमित्त मात्रत्व बोलते हैं। आप सुनने के लिए बैठे हैं तो हम सुनाने के लिए बैठे हैं, दोनों की बात स्वीकार कर लेना चाहिए। आपको यह धारणा है कि हम सुनेंगे तो कुछ हमारा सुधार होगा, हमारी भी ये धारणा है कि हम सुना देंगे तो इनकी कुछ कुछ न कुछ तो है, मानते तो हैं, जितना मानते हैं उतना तो मान लेना चाहिए, ऊपर से भी नहीं और भीतर भीतर से नहीं, सही सही मान लेना चाहिए। इसी का नाम है निमित्त नैमित्तिक संबंध। नीचे गाथा 3 एक साथ दी जा रही है। जीव परिणाम हेतुं कम्मत्तं पुग्गला परिणमन्ति, पुग्गल कम्म निमित्तं तहेव जीवो परिणमति। जीव के परिणाम को हेतु बना करके पुद्गल जितने भी हैं वे कर्म के रूप में परिणत हो जाते हैं। आप लोगों को तत्वार सूत्र का बंद जो पंचम अध्याय में बंद के स्वरूप के बारे में कहा गया, ये बंद प्रायोगिक होता है और वैश्रषिक भी होते हैं। बादल इत्यादि का बन जाना बंध जाना यह वैश्रषिक है, और प्रायोगिक दो प्रकार के, एक अजीवकृत और एक जीवाजीवकृत। अजीवकृत क्या है? प्रायोगिक बंध, जो कुछ भी जतु है, सरस है आदि, गोंद है इत्यादि के माध्यम से एक दो प्रश्नों को चिपका देना, यह बंध जो हुआ अजीव संबंधी है। लेकिन प्रायोगिक है, जो कोई भी मकान वगैरह बनते हैं ये सब प्रायोगिक हैं, लेकिन अजीव में होते हैं ये सब पेशा। और जीवाजीव कृत क्या है? उसके लिए उन्होंने कहा कर्म और नो कर्म ये प्रायोगिक जीवाजीव कृत हैं, इसमें केवल जीव का ही आधार है ऐसा नहीं, इसमें केवल पुद्गल का ही हाथ है ऐसा भी नहीं, किंतु जीवाजीव कृत है इसलिए प्रायोगिक है। एकांत रूप से जीवों में परिणाम हो गए तो क्यों हो गए? यदि एकांत रूप पर का निमित्त उसमें नहीं मानेंगे तो यह कभी भी भाव मिट ही नहीं सकेंगे, और मिट नहीं सकेंगे तो मोक्ष मार्ग कोई वस्तु नहीं रहेगी, मोक्ष मार्ग नहीं रहेगा तो मोक्ष भी कोई वस्तु नहीं है। मंजूर है तो स्वीकार हो, ऐसा तो नहीं, ऐसा नहीं है तो फिर निमित्त को स्वीकार करना पड़ेगा। जीव के परिणाम को निमित्त बना करके ही पुद्गल कर्म वर्गना है कर्म के रूप में परिणत हो जाती हैं। आपके पास यदि योग है नो कर्म वर्गनाएं ग्रहित होंगी, योग हैं तो कर्म वर्गनाएं भी भूमिका के अनुसार ग्रहित होंगी। मोह सहित है तो अपने अपने ढंग से मोहिनी परिवार भी आएगा, ज्ञानावरण आदि घाट कर्माएंगे आदि। यदि मोह नहीं है केवल योग है तो साता वेदनी की प्रकृति आएगी और वह एक समय रुक करके दूसरे समय में निकल जाएगी, यह प्रक्रिया तो जारी होगी। यह योग को निमित्त लेकर के वहां वहां पर रहने वाले कर्म वर्गनाएं जो कर्म के रूप में परिणत हो गई, लेकिन भिन्न वर्गनाएं नहीं परिणत हो गई, केवल साता के योग्य जो वर्गनाएं थी वह वर्गनाएं साता के रूप में परिणत हो गई। एक कर्म सिद्धांत में एक प्रसंग आता है, योग के माध्यम से कर्म वर्गना आते हैं तो कितनी आती हैं? तो कोई संख्या निर्धारित उन्होंने कर दी। अब जो को सारे सारे कर्म छूट गए, मूल कर्म भी उत्तर भेद भी सारे सारे छूट गए, केवल एक साता प्रकृति रह गई। अब इसमें कितनी वर्गना आएंगे? जितनी वर्गना पहले आ जाती थी उतनी वर्गना आएंगे, पूरी पूरी साता में ही दे देंगे और कोई भी वहां पर हिस्सादार नहीं है। कभी आयु कर्म के साथ भी बंद होता है, कभी आयु कर्म बनता नहीं है तो सात कर्मों का बंद होता है। सात कर्मों का बंद कहां तक होता? आयु कर्म को छोड़ करके तो नौवे गुण स्थान तक होता है। फिर इसके उपरांत वह मोहनी का भी बंद छूट गया, पहले ही आयु कर्म का बंद छूट गया, दो कर्म छूट जाते हैं, शेष जो रह गए उनके अपेक्षा से बंद होता और दसवें तक तो अंतिम समय तक चलता, फिर इसके उपरांत ग्यारहवें अथवा बारहवें में चले जाते हैं तो केवल साता का ही आश्रय होता, योग मात्र प्रत्यय रह गया। यह सिद्धांत है। यदि वह योग नहीं है तो आश्रय हो ही नहीं सकता। कई लोगों की यह धारणा हो सकती है कि वहां पर भाव कर्म नहीं है, कहां भावाश्रव नहीं है, भावाश्रव नहीं है तो द्रव्याश्रव हो ही नहीं सकता। भाव यदि नहीं करेगा तो द्रव्याश्रव हो कैसे? क्योंकि जीव के परिणाम को हेतु बना करके ही द्रव्याश्रव या द्रव्यबंध होता है। पुद्गला कम्मत्तम परिणमंती, पुद्गल कर्म के रूप में परिणत हो जाते हैं जीव परिणाम हेदुम, जीव के परिणाम को हेतु बना करके है। आपके पास जीव के परिणाम यदि हुए हैं तो कर्म वर्गणाएं कर्म के रूप में परिणत होंगी, और यदि कर्म उदय में है तो जीव में परिणाम होगा, ये भी उतना ही है। नहीं होगा ऐसा नहीं हो सकता। तेरवे गुणस्थान तक जीव में भावाश्रव होता है, इसलिए भाव बंद की भी व्यवस्था वहां पर विद्यमान है। चौदह गुणस्थान में बंद ठप हो जाता है। तेरहवें गुणस्थान तक संबंध गुणस्थान माने गए हैं। प्रथम गुणस्थान से लेकर के तेरहवें गुणस्थान तक बंद योग्य गुणस्थान माने गए हैं, और बंद का अभाव यदि हो गया तो चौदह गुणस्थान में बंद नहीं है, उससे ऊपर उठ गए। ये बात अलग है। दसवें गुणस्थान तक जो बंद होता है वह आवादा काल सहित स्थिति को लेकर के होता है, किंतु ग्यारहवें बारहवें तेरहवें गुणस्थान में आवादा काल के बिना और वह बंद होता एक क्षणवर्ती, अनंतर समय में वह फल देकर के चला जाता है। लेकिन बंद नहीं होता ऐसा नहीं कहा गया। उपचार से मान ले नहीं, आचार्यों ने कहा हम यहां पर उपचार का खेल रखते ही नहीं। क्यों माने उपचार से? भाव कर्म नहीं ऐसा मान करके द्रव्याश्रव हो गया, ऐसा तो हम सिद्धांत मान नहीं सकते, क्योंकि द्रव्याश्रव हुआ है तो भावाश्रव हुआ है। भाव हुए बिना द्रव्य में इस प्रकार का परिणाम हो ही नहीं सकता। कौन कह सकता वो साता को परिणत करा दे? कर नहीं सकता। वर्गनाएं कर्म के रूप में तभी परिणत होते हैं भाव के निमित्त को लेकर के। आत्मा में जो भाव होते हैं उसका भी यही इतिहास है कि तेरहवें गुणस्थान में आश्रय क्यों हो रहा, तो आत्मा के कर्म का उदय है इसलिए भाव हो रहा। कौन सा ऐसा कर्म है? तो औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय है, तो वहां पर योग होगा, और योग होगा तो द्रव्याश्रव भी होगा। औदारिक शरीर नाम कर्म का सत्व रह जाए नहीं होगा। चौदह गुणस्थान में औदारिक शरीर नाम कर्म का सत्व है लेकिन आश्रव नहीं है, क्योंकि उदय होना अनिवार्य है। उदय के बिना निमित्त वह बन नहीं सकता। सत्ता को लेकर के कुछ हद तक कुछ बंद होते हैं, लेकिन यहां पर तो उदय होना अनिवार्य है। उदय हो में है औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय है तो निश्चित रूप से वहां पर होगा, अन्यथा वह बात बनेगी नहीं। शरीर नाम कर्म एक ऐसा जो वह योग के लिए कार्यकारी होता है। अब औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय यदि नहीं हुआ तो क्या करेंगे हम? तो जब वह समुद्घात के समय पर चला जाता है तो उस समय वह कारण ना शरीर नाम कर्म का उदय रहता, तो उसके द्वारा आश्रव तो होगा, निराश्रव तो हो नहीं सकता वो, क्योंकि आठ समय लगते हैं समुद्घात को प्राप्त करके, समुद्घात को समेटने के लिए। उसमें तीन समय वह नौ कर्म वर्गना से बच सकता, कर्म वर्गना से नहीं। हाँ, ध्यान रखो, लोक पूर्ण जो समुद्घात हुआ उस समय अनाहारक तो है लेकिन वह कर्म का आश्रवक नियम से होता। उस समय में भी उसके प्रत्येक प्रदेश पर उतने ही वर्गनाएं आ रहे हैं जो पहले आती थी, उसमें कोई बाधा है ही नहीं। इसलिए यह जीव में परिणाम जो होता है यह कर्म के उदय में हुआ, और पुद्गल वर्गना है कर्म के रूप में जो परिणत हो जाती है वह उसका कार्य हुआ। यद्यपि कर्म वर्गनाएं कर्म के रूप में परिणत हो गई इसलिए उपादान तो पुद्गल ही माना जाता, लेकिन निमित्त जीव का परिणाम आवश्यक होता। और वह भी ऐसा नहीं कि आपका परिणाम हो और मेरे लिए बंद हो जाए, और मेरे परिणाम हो और आपके लिए बंद हो जाए और मैं निर्बंध रह जाऊं, ऐसा नहीं। जो करता है वही उसका स्वामी है, जो स्वामी है वही उसका भोक्ता होगा। ये तीनों जो हैं एक दूसरे से संबंधित हैं, इसको कोई भी नकार नहीं सकते। हम पहले ऊपर ऊपर हम मान ले भीतर से तो है ही नहीं, क्योंकि मन ही जब चला गया है तो कैसे वो बंद होगा, भाव ही कैसे होंगे, ऐसा नहीं। भाव का अर्थ इतना ही, आत्मा का वहां पर प्रदेशों का परिस्पंदन ही भाव आश्रव और भाव बंध है। एक क्षण वर्ते हम मान ही रहे हैं, लेकिन एक क्षण के लिए भी वहां के रहने वाले वर्गनाएं कर्म के रूप में परिणत हो जाते हैं। कितनी बड़ी घटना है। इसी कारण चौदहवें गुणस्थान में उसे प्रवेश नहीं मिल रहा है। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त से लेकर के पूर्व कोटि वर्ष तक प्रतीक्षा करो, लेकिन नहीं एडमिशन नहीं होगी चौदहवें गुणस्थान में। फर्स्ट क्लास फर्स्ट आओ या थर्ड क्लास आओ, प्रवेश नहीं मिलेगा। इतना कार्य करके आओ और अंतर मुहूर्त ही प्रवेश मिलेगा। वहां रुकना नहीं है चौदहवें गुणस्थान में। चौदहवें गुणस्थान जैसे उदयावली की व्यवस्था है, उसी प्रकार उसकी एक व्यवस्था है। जैसे उदयावली में किसी प्रकार से रुकाव नहीं है, उसी प्रकार चौदहवें गुणस्थान में रुकावट नहीं, चलते रहो, कर्म काटते हुए आगे बढ़ो। दूसरे गुणस्थान में हाँ ठीक है, नहीं मतलब वहां पर ध्यान होते हुए भी, चतुर्थ ध्यान होते हुए भी कुछ रुक जाए, रुकना नहीं। जैसे उदयावली की व्यवस्था रहते उसी प्रकार ये इसकी व्यवस्था है। यहां पर 6 आवली है और वहां पर 1 आवली है, इसलिए उदयावली कही है। यहां पर 6 आवली है, 6 आवली उदयावली की नहीं होती, ध्यान रखो। हाँ उदय 1 ही आवली है, इसलिए कि वहां पर उदीर्णा किसी कर्म की नहीं होती है। चौदहवें गुणस्थान में किसी भी कर्म की उदीर्णा नहीं है, और दूसरे गुणस्थान में जितने सारे सारे उदीर्णा ही है। गिर ले गिरे, गिरो या चढ़ो, इससे कोई मतलब नहीं। उदयावली की बात कही जा रही है, वहां की व्यवस्था क्या होती ये बात कही जा रही है। वहां पर उदीर्णा की व्यवस्था नहीं, फिर भी उसमें ध्यान होता है और प्रक्रिया होती है, करण होते हैं, व्यवस्था होता है। 72 प्रकृतियां हाँ 85 तो हैं, उदय में तो 13 हैं, 72 प्रकृतियां सत्ता में से ही निकल करके उदयावली में आ करके और वह स्तुभक संक्रमण के माध्यम से अपना काम तो हो जाए। ये सारी सारी प्रक्रिया है, एक प्रकार से आदेश भी ज्यादा कर्मों का क्षय चौदह गुणस्थान में होता है बंधुओं, इसे खेल नहीं है। 13 गुणस्थान सब मिलकर के आधा नहीं कर पाते, और चौदह गुणस्थान कहता है कि मेरे पास भेज दो, सब ठीक कर देंगे। और जो संक्रमण की प्रक्रिया में नहीं रहता, स्तुभक संक्रमण कोई संक्रमण नहीं है, संक्रमण की व्यवस्था सत्ता में हुआ करती है, लेकिन स्तुभक संक्रमण एक ऐसा संक्रमण है, सब संक्रमण का बाप जैसा है, काम करता है। एक सेकंड एक समय में वो सब 72 प्रकृतियों को हम केवल 13 में ही आपका काम चलेगा, बाकी सब कोई स्वमुख से आ नहीं सकता। जो 13 है उसी के अनुसार बाकी 72 प्रकृतियां बिना आवाज किए, बिना अपना परिचय दिए, बस उसमें नामकर्म का परिवार सबसे बड़ा है। अब देखो, पुद्गल कर्म निमित्तम तहे जीवो भी परिणमति। इसी प्रकार पुद्गल कर्म के निमित्त को, पुद्गल कर्म का अर्थ, निमित्त का अर्थ क्या होता है? 2 प्रकार के पुद्गल कर्म, एक तो उदय में आया हुआ और एक सत्ता में रहता है, उसका भी कार्य होता है, उसका भी कार्य होता है। उसके द्वारा भी कुछ कर्म ऐसे बंधते हैं और अनिवार्य होता है। उदय में नहीं भी आए तो भी बनते हैं, और जो उदय में आते हैं उनके द्वारा तो बनते ही हैं। आपका संजलन का यदि उदय है तो संजलन के चार चौकड़ी जो है ये तो निश्चित रूप से बंधेगा ही, आप रोक नहीं सकते। प्रत्याख्यान का उदय है तो प्रत्याख्यान संबंधी वो बंधेगा, चार बंधेंगे। किंतु प्रमाद संबंधी अस्थिर अशुभ असाता वेदने अयश कीर्ति अरति और शोक ये बंधे भी और नहीं भी बंधे। अब देखो क्या हो गया, प्रमाण की भूमिका में आने के उपरांत सबके लिए छह प्रकृतियों का बंध हो ऐसा कोई नियम नहीं, लेकिन जो ही आप मतलब सप्तम गुणस्थान में हैं या छठे गुणस्थान में आ गए, संजलन यदि उदय है तो चारों का बंध होगा, ये अनिवार्य हो गया। ऐसे कई परिणाम जो कि उस गुणस्थान में इस ढंग से परिणाम को निमित्त लेकर के बंध को प्राप्त हो जाते हैं, और कुछ गुणस्थान में इस प्रकार पुद्गल के कारण आत्मा में भाव होते हैं। एक वैचित्र अपने को समझ में आया, 25 कषाय अथवा 28 का मोह का परिवार है और 26 समझ लो एक प्रकार से मोहनी का परिवार, बंध की विवक्षा को लेकर के चलते हैं। तो प्रथम गुणस्थान में कोई भी ऐसा समय नहीं होता जो मिथ्यात् की उदीर्णा न हो, उदीर्णा न हो, उदय नहीं कह रहा हूं मैं, उदीर्णा न हो। किंतु 16 कषायों के बारे में कहा जाता है ये सिया उदीरिया सिया अनुदीरिया, इनके उदय तो रह सकता है लेकिन उदीर्णा हो ये कोई नियम नहीं। एक महत्वपूर्ण है ये कर्म सिद्धांत में, प्रथम गुणस्थान में मिथ्यात् की उदीर्णा एक समय अब रह गया तो भी होगी, मिथ्यात् को जिस समय क्षय हो रहा उस समय महाराज एक कावली के लिए तो नहीं होना चाहिए। ध्यान रखो चतुर्थ गुणस्थान में ही मिथ्यात् का क्षय होता है, नीचे नहीं होता, मिथ्यात् गुणस्थान में मिथ्यात् का क्षय कभी भी होता ही नहीं, सत्तागत कार्य होता रहता उसका। इसलिए मिथ्यात् गुणस्थान में मिथ्यात् की उदीर्णा एक समय के लिए भी विराम नहीं पाएगी, होती रहेगी। लेकिन अनंतानुमंदी आदि 16 जो कषाय है उनका हमेशा उदीर्णा हो ऐसा कोई नियम नहीं, एक कर्म का वैचित्र है। उदीर्णा इसके लिए कोई अनिवार्य नहीं, किंतु जब बंधता है उसके लिए चारों चौकड़ी का बंध होता जाता है, ये उनका अनिवार्य। तो कर्मों का वैचित्र ऐसे है, आपके पास मोह रह आवे और छद्मस्त में भी बादर सांप्राय रह आवे और वह बंद न हो, मोह के परिणाम न हो, ऐसा संभव नहीं। रात में गाढ़ निद्रा में भी आप सो जाओ तो भी वह कर्म का परिणाम निश्चित रूप से आपको फल देगा और वहां पर कर्म की बंद की प्रक्रिया जारी रहेगी। ऐसे ऐसे ये स्थल हैं जिन स्थलों में आपको बंद स्वीकार ही करना पड़ेगा। एक और जिसे सम्यक मिथ्यात्व की उदीर्णा है, तृतीय गुणस्थान में ही होती है इसकी उदीर्णा, और सर्वघाती प्रकृति सब आचारों ने स्वीकार की है। सर्वघाती प्रकृति देश जातंत्र भले ही हो लेकिन इसको सर्वघाती स्पर्धकों से युक्त ही सबने माना। लेकिन बात ऐसी इसकी उदीर्णा होते हुए भी और सब कुछ होते हुए भी इसका इसके द्वारा कोई एक भी प्रकृति का बंध नहीं बताया। तृतीय गुण स्थान में बंद प्रत्ययों की विवक्षा जब करते हैं तो चतुर्थ गुण स्थान में जो है वही यहां पर भी लागू हो जाती है। परिणाम उसके सर्वघाती के स्पर्धकों के उदय में सम्य मिथ्यात रूप हुए बिना रह नहीं सकते, लेकिन फिर भी उसको बंद प्रत्ययों में नहीं माना। स्वयं का बंद नहीं होता, ये बात अलग है, लेकिन वह बंद प्रत्यय तो होना चाहिए। जैसे नवमे गुणस्थान के ऊपर जाने के उपरांत सूक्ष्म सूक्ष्म लोभ हो जाता है दसवें गुणस्थान में जाकर के, तो नवमे गुणस्थान में जब प्रक्रिया चालू हो जाती है तो उस समय इससे भी बहुत क्षीण भाव को लेकर के रहता है संजलन का, जो सूक्ष्म संजलन बोलते हैं लोभ, उसके द्वारा स्वयं का तो बंद नहीं होता, लेकिन वह 16 प्रकृतियों का बंद किए बिना रह नहीं सकता। 16 है ना, हाँ, दसवें गुण स्थान में। अब देखो स्वयं का बंद नहीं हो रहा, सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान में स्वयं लोभ का बंद नहीं हो रहा, बहुत हीन स्थान गतत्वात, इतना हीन स्थान को वह प्राप्त है कि वह स्वयं का बंद तो नहीं कर सकता, लेकिन पांच ज्ञानावरणी, चार दर्शनावरणी, पांच अंतराय, पांच पांच दस और चार 14 यशक कीर्ति और उच्च गोत्र, इनका बंद हुए बिना रहेगा ना, और इसका बंद का प्रत्यय सूक्ष्म सांप्राय है। साताभेदनी जो है योग प्रकृति, इस अपेक्षा से नहीं, 17 प्रकृति हो जाए लेकिन योग की अपेक्षा से, योग तो बाद में भी रहता है इसलिए योग का बंद। तो ये 16 प्रकृतियों का बंद अनिवार्य हो गया, आत्मा का परिणाम उस रूप होगा और ये 16 प्रकृतियों में से एक भी नहीं छूटेगा, बंधेगा, अनिवार्य रूप से बंधेगा। सोचने की बात है कि इतने हीन स्थान होने के उपरांत भी संजन लोभ के पास, सूक्ष्म लोभ के पास इतने सामर्थ्य है कि वह 16 प्रकृतियों को बांधे बिना रह नहीं सकता। जितने समय है उतने समय में इन 16 प्रकृतियां प्रति समय बंध रही हैं, ऐसा नहीं कि सारे सारे समय मिलकर के एक बार 16 प्रकृतियों को बंद हो गया, प्रति समय बंद होगा। जिस प्रकार प्रति समय निर्जरा घटित हो जाती है उसी प्रकार वहां पर बंद योग्य प्रकृतियां 16 अनिवार्य रूप से बनेंगे, ध्रुव बंद होगा वहां पर। सम्यक मिथ्या तो दर्शन मुहूर्णी की प्रकृति है और फिर भी उसके द्वारा स्वयं का बंद नहीं, हम तो मानते हैं कि दो प्रकृतियां पहले से छूट दें, 26 प्रकृतियां हैं बंद, किंतु इन स्वयं का बंद नहीं है तो संजन जैसे बांध रहा है सूक्ष्म संप्राय गुण स्थान में, उसी प्रकार इसके द्वारा भी कुछ एकाद प्रकृति बंध जाए। लेकिन आज तक किसी भी आचार्य ने इसके लिए बंधक नहीं कहा है, इसलिए हमारा कहना है कर्म के उदय में कुछ भाव होते हैं, वो भाव सारे सारे कर्म के बंधक हो ऐसा कोई नियम नहीं है, और जगन्य दशा में प्राप्त होने के उपरांत भी संजन भाव जो कराएगा उसके द्वारा पुनः बंद होगा यह भी अनिवार्य है। ये 74 प्रकृतियों का जो बंद चतुर्थ गुण स्थान में है, चतुर्थ गुण 77, हाँ 77, किंतु तीन प्रकृतियों के यहां पर बंद रुक जाता है, बल्कि संवर के हिसाब से हम देखते हैं तो चतुर्थ गुणस्थान के अपेक्षा से तृतीय गुणस्थान एक कदम आगे वाला रुक जाता सिद्ध होता है, क्योंकि जिस गुणस्थान में ज्यादा प्रकृतियों का बंद होता वहां पर संक्लेश परिणाम ज्यादा होंगे और जिस गुणस्थान में कम प्रकृतियों का बंद होता है उसके लिए विशुद्ध स्थान ज्यादा देना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है। जिस गुणस्थान में मरण नहीं है, ध्यान रखो कितना आश्वासन है आप लोगों को, देखो हमारे गुणस्थान में आप आओगे तो कभी भी मरण नहीं होगा, कभी भी आओ आप, रात के 12 बजे भी आ जाएंगे तो आपको कभी भी हमारे वजह से बाधा नहीं आएगा। मरण का भय तो हमारे इस गुणस्थान में नहीं, ठीक मान लिया जाए, चतुर्गुणस्थान से भी ज्यादा पूज्यता तृतीय गुणस्थान को स्वीकार कर लिया जाए, नहीं, परिणामों का एक वैचित्र है। जीव परिणामों को लेकर के कर्म वर्गणाएं कर्म के रूप में परिणत हो जाती हैं और कर्मों के उदय में जीवात्मा को भाव करना अनिवार्य होता है। कहां क्षपक श्रेणी मंडी है, कहां उत्कृष्ट उत्कृष्ट सारे सारे कार्य होते चले जा रहे हैं, अब एक समय के उपरांत मोह का क्षय होना है, किंतु वहां पर 16 प्रकृतियों का बंद वह छोड़ दो, नहीं, वो कहता है कि नहीं, हमारा यह राज्य है, हमारी यह परिधि है, हमारा यह कार्य क्षेत्र है, जब तक मेरा कार्य क्षेत्र रहेगा ये मैं कार्य करता रहूंगा, क्योंकि मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूं। जैसे कोई भी राष्ट्रपति ले लेता शपथ ले लेता और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो वह भी कहता है कि नहीं, जब तक मेरा कार्यकाल रहेगा मैं इस कार्य के लिए समर्पित होकर के कार्य करूंगा, रात और दिन गिनूंगा नहीं, मेरा कार्य करना एक कर्तव्य है। उसी प्रकार वह संजलन सूक्ष्म लोग भी कहता है कि मेरा यह कार्यकाल है, मेरा यह कर्तव्य है, चाहे वो रात के 12 बजे क्षपक श्रेणी मांडे या दिन के 12 बजे। बिल्कुल सशक्त रहता वो काम में भी नहीं आएगा, ये भी बात है, काम में इसलिए पिछले जने वो तो हमारा डालना है, रात के 12 बजे भी किसी को क्षपक श्रेणी मंड जाए और दस्यो गुणस्थान के अंतिम समय हो जाए तो हम मांड लेंगे, ये कौन देखता, ऐसा नहीं, हमारे कार्य के बिल्कुल 16 प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग बंद उसमें होगा। और उत्कृष्ट अनुभाग का मतलब अब प्रशस्त प्रकृतियों के लिए नहीं, प्रशस्त प्रकृतियों की अपेक्षा से बाकी जितने भी हैं वहां पर जघन्य बंद होगा, ये कर्तव्य। देखो संजलन सूक्ष्म संजलन और सम्य मिथ्या, इन दोनों के बीच में यदि सन्निकर्ष या अल्प बहुत के बारे में हम चर्चा करें तो जमीन आसमान का अंतर हो जाता है, लेकिन फिर भी इसके द्वारा बंद नहीं हो रहा है और इसके द्वारा बंद हो रहा है। एक तो यह देशघाती है, एक तो यह देशघाती है, जबकि वह सर्वघाती है। देशघाती में भी जघन्य अवस्था को प्राप्त हो चुकी है, स्वयं का बंद करने की हिम्मत उसके पास नहीं है, फिर भी कहता है कि नहीं छोड़ूंगा नहीं, हां मैं अपने लिए कुछ कर नहीं सकता, इसका प्रबंध, इसका अर्थ यह नहीं कि मैं किसी के लिए भी प्रबंध नहीं कर सकूं, प्रबंध करता है बिल्कुल, तीर और कमान ही हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, शब्द भेद ही चलते हैं, मनोभेद भी चल सकते हैं, इसमें क्या बात है, अधिकार है, सीख कर क्या है, अनंत काल से यह कार्यक्रम रुकाने और दसवें गुणस्थान के अंतिम समय तक रुक नहीं सकता। यह परिणाम, ये निमित्त और नैमित्तिक परिणाम कैसे होते हैं आप इसको समझो, ये तो निमित्त है, अरे निमित्त क्षपक श्रेणी मान रहा है, मान रहा है, और वह मोहनी को क्षय करने वाला करने वाला समाप्त कर देगी, नहीं, उदीर्णा तो रुक जाएगी क्योंकि वह स्वमुख से उदय में आ रहा है, इसलिए दसवें गुणस्थान के अंतिम एक आवली में संजन जो सूक्ष्म लोभ है उसकी उदीर्णा नहीं है, क्योंकि उदीर्णा मुख से उसका क्षय नहीं हो सकता, उदय मुख से, यह भी कानून है, और उदय भी नहीं उदीर्णा भी नहीं, उदय है और सूक्ष्म सांप्राय है, उदीर्णा भी नहीं, लेकिन फिर भी वह 16 प्रकृतियों का बंद कर रहा है, और जब उदीर्णा थी उस समय में भी 16 प्रकृतियों का वह बंद कर रहा है, क्या मामला है, बड़ा कठिन है। तुलना करते हैं तो अंतर्मुहूर्त का वह दसवें गुण स्थान है, और अंतर्मुहूर्त का यदि है तो पूरा का पूरा वह उदीर्णा वाला गुण स्थान नहीं, अंतिम एक आवली में उसकी उदीर्णा नहीं होगी। बाकी जितने भी आवलियां हैं दसवें गुण स्थान के, जो काल को यदि हम अपने सामने रखते हैं तो संभव है कि असंख्यात आवली उसमें सिद्ध हो, अल्पकाल नहीं है उसको, क्योंकि एक अंतर्मुहूर्त में भी असंख्यात आवलियां और एक आवली में भी असंख्यात अंतर्मुहूर्त हमारे यहां वीरसेन महाराज बताते हैं। लेकिन एक आवली को छोड़कर के अन्य आवलियों में असंख्यात समयों में उदीर्णा का क्रम चल रहा है। कितना कुछ का संजरण लोभ, जो कि सूक्ष्म लोभ है, उदीर्णा के समय में भी वह 16 ही प्रकृतियों के बंध के लिए प्रत्यय है, और उदय के काल में भी वह 16 ही प्रकृतियों का बंध का प्रत्यय है। लेकिन यह ध्यान रखना कि जो अंतिम समय में अप्रशस्त प्रकृतियों में स्थिति और अनुभाग पड़ते, उससे नीचे के समयों में जो पड़ते हैं उसमें बहुत अंतर है। उसी प्रकार अंतिम समय में जो प्रशस्त प्रकृतियों में अनुभाग पड़ता है, उस हिसाब से नीचे की आवलियों में उसका जो बंद होता अनुभाग बंद, वह अलग क्वालिटी का होता, उत्कृष्ट नहीं होता। इतना तो अंतर आया, लेकिन प्रकृतिगत 16 प्रकृतियों का बंद उसका एक समय के लिए भी नहीं रुका, उदीर्णा के समय में भी और उदय के समय में भी। इसलिए उदैया बंधयरा यह व्याप्ति नहीं घटित करना चाहिए। इस गाथा की व्याख्या करते हुए वीरसेन महाराज ने धवलादि ग्रंथों में कहा है, ये गाथा रेफरेंस के रूप में दिया कि औदयिक भाव बंध यदि होगा तो औदयिक भाव के द्वारा ही होगा, किंतु जो जो औदयिक भाव है वह सारे सारे बंध के कारण है ऐसा नहीं होगा। जैसे नाम कर्म का उदय है तो औदयिक भाव है वो भी बंध के लिए कारण हो जाएगा, ऐसे उन्होंने कुछ रेफरेंस दी है, तो ऐसा नहीं होता। इसी प्रकार वह मान लो अघात्या कर्मों का उदय है वह बंध के लिए कारण नहीं है, ऐसा मान सकते हैं, लेकिन घात्या कर्मों में भी ज्ञानावरण कर्म का उदय वो भी बंध के लिए कारण हो जाए तो वो बंध का कारण नहीं है। वह औदयिक सायुक्ष विभाग कुछ भी उदय, क्यों केवल ज्ञानावरणी कर्म का उदय चल रहा तो औदयिक भाव है, दसवें गुण स्थान के अंतिम समय में उसका उदय है, बल्कि उदीर्णा है, उदीर्णा इसलिए नहीं कि अंतिम वह आवली में उसका भी क्षय होना है तो नहीं, लेकिन तो वह होते हुए भी वह औदयिक भाव होते हुए भी बंध का कारण नहीं है। उसी प्रकार मोहिनी कर्म में भी यह अपने आप सिद्ध हो रहा है, सम्यक मिथ्यात्व औदयिक भाव होते हुए भी उसका उसके द्वारा भी बंध नहीं और उसके द्वारा अन्य प्रकृतियों का भी बंध नहीं। इसी प्रकार सम्यक प्रकृति का उदय है, उसके द्वारा भी किसी भी प्रकृति का बंध नहीं है, जबकि यह देशघाती ही है, सम्यक प्रकृति देशघाती ही है, इसमें सर्वघाती स्पर्धकों का समावेश नहीं है। कथंचित संचलन में सर्वघाती स्पर्धकों का समावेश है, फिर भी कोई बात नहीं, उसका मतलब नहीं। नौवें गुणस्थान में जाने के उपरांत एक स्थान ही उदय में आता है, इसको भूलना नहीं चाहिए। सुनो तो, अभी हम ये कह रहे हैं कि नौवें गुणस्थान में संजलन जब चला जाता है तो उस समय वह एक देश ही यानी एक स्थानी ही उदय होता है, एक स्थानी उदय होता तो बंद नहीं होना, ये तो द्विस्थानी में बंद नहीं हो रहा तो वही एक स्थानी में भी बंद, एक स्थानी का भी बहुत कुछ कम होने के उपरांत एक अपूर्व स्पर्धक और एक पूर्व स्पर्धक, दो प्रकार के स्पर्धकों के शक्त्यंश का नाम स्पर्धक है, वो ऊपर जो ही संजन को सूक्ष्मीकरण किया जाता है तो अपूर्व अपूर्व स्पर्धक बनाता चला जाता है। ये उनकी एक व्यवस्था दी गई है, फिर भी वह पट्टा 16 प्रकृतियों का बंध किए बिना रह नहीं सकता, क्योंकि ये हमारे घुट्टी में ही दिया हुआ है। वैचित्र है, इसके बारे में आप लोगों को सोचना चाहिए। केवल स्वाध्याय स्वाध्याय का अर्थ ये नहीं कि पन्ना पलटाते चले जाओ, पन्ना पलटने के तो बहुत हो गया, अब थोड़े बहुत रुक रुक करके आप करिए, हैं? रुक रुक करके भोजन करते समय ऐसा नहीं कि हाफ हाफ करके खाओ, हाफ हाफ करके खाएंगे तो वह पचेगा नहीं सही सही, और दूसरी बात स्वाद भी नहीं आएगा तो रस भी ज्यादा नहीं बनेगा। हाँ, तो रुक रुक करके उसका सैंपल के रूप में देते हुए सेवन करिए। तो कर्म का भी ऐसा सिद्धांत है, स्वाध्याय करो, किसका क्या परिणाम, किस कौन से गुणस्थान में जाकर के होता है, किस स्थिति में कर्मों के भावों को जीव करता है, नहीं कर्म जीव के गुण में जीव के भावों को करता है, किंतु एक दूसरे के निमित्त के द्वारा दोनों के ही परिणाम होते चले जाते हैं, यह निमित्त नैमित्तिक सिद्धांत है। हमारे परिणाम के द्वारा कर्म में भाव शक्ति आ जाती है, कर्म वर्णय कर्म के रूप में परिणत हो जाते हैं, कर्म के उदय में हमारे पास नूतन बंध के योग्य भावों का उत्पादन होता है, होता चला जाता है। इस रहस्य को जब समझते हैं तो हम हाथ से नहीं मिटा सकते इस रहस्य को, हाथ से नहीं। कई बार जो क्या होता, कांटा गड़ा हुआ रहता है ना, वगैरह लगा करके घास लेट तेल वगैरह लगा देते हैं तो वह दर्द के द्वारा तो महसूस होता, लेकिन कहां है यह स्थान पर्टिकुलर जो पॉइंट देखने में नहीं आता, तो वह सांप दिखने लगा, सांप दिखने लगा, थोड़े से खोदा खादी कर दी तो यूं ये हाथ में आएगा। जब चार पांच बार प्रयास किया जाता वो हाथ में नहीं आता, यूं यूं हाथ करने से वह हिलता रहता है और भीतर भीतर अपने को वह हिलता हुआ देखने में भी आता है, हाथ के द्वारा स्पर्श करने से भी आता है, लेकिन पकड़ में नहीं आता। जब ये अभी अभी एक घंटा में जो गड़ा हुआ ये अपने कांटा है वो भी आपको हाथ नहीं लगता, तो अनंत काल पूर्व में जो गड़े हुए कर्म है यूं कर लेंगे आपका, कैसे कर रहे हो आप, ऐसे स्थान पर डेप्थ में जाकर के वह बैठ जाता है तो वह ऐसा नहीं हो सकता। उनको परिणामों के द्वारा ही हिलाना था, कई बार सुई के द्वारा उसको यूं यूं कर दिया जाता है तो यूं यूं करने से ऊपर से टूट जाता है, नीचे का हिस्सा कहता है अब मुझे हिला भी नहीं सकेंगे आप, जब तक पूरे पूरे ब्लेड से काटोगे नहीं तब तक मेरा दर्शन भी मुश्किल हो जाएगा, ध्यान रखो। अब उसके लिए गेहूं का क्या पोटनिस है, अलसी का है पुटनिस, पुलटिस, अच्छा ठीक है, नाम निक्षेप है ये पुलटिस, तो दक्षिण में अलग कहा जाता है। तो ये अब 8 घंटे एक दिन उसको बांध करके सोवो, फिर वह धीरे धीरे पकाएगा, उस स्थान को मुलायम बनाएगा, फिर इसके उपरांत 12 घंटे के लिए पुलटिस का जो गर्मी पहुंच जाती है तो उस स्थान को यूं दबा दो तो भीतर से ऊपर आ जाता है, उसका दर्शन हो जाता है, है? हाँ, तो उसी प्रकार कि जब तक वह द्वितीय शुक्ल ध्यान रूपी पुलटिस नहीं बांधेंगे तब तक भीतर के कर्म बाहर नहीं आएंगे, कांटा गड़वा दो या कुछ भी कर दो कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ, वह उस रूप परिणत होता चला जाता है, कभी कभी चाय बन जाए तो फिर कांटा तो गायब, कांटा गायब हो जाता है, चाय का रूप धारण कर लेता, उसने स्थान में ऐसा वह कड़ा बना देता है कि वहां पर किसी प्रकार से खून का प्रवेश ही नहीं हो पाता। और वह ऐसा कि आप पैर रखोगे अरहंत, दूसरे रखोगे सिद्ध, चल नहीं पाओगे, चलो विहार करो, कैसे करोगे? ऐसा भी ऐसे कुछ एकाध साल में ही वह चाय बन जाता है। कर्म भी बहुत दिन के हैं, सागरूपम काल के, वह ऐसे ही आपको चलने नहीं देते। फिर पुंडलिस बांधो या ऑपरेशन करवाओ या लंगड़ाते हुए चलो, लंगड़ाते हुए चलो, एड़ी नहीं टिका सकते। कभी कभी मान लो पंजे में हो गया तो चल ही नहीं सकते, एड़ी से चला नहीं जा सकता, एड़ी ऊपर करके चल सकते पंजे के बल पर, और एड़ी को भार करके पंजा उठा करके चलो तो धड़ाम से गिर जाओगे, चलना ही बंद हो गए। वैसा किया ले लो चलो। ये स्थिति होती है कि अन्योन निमित्तेण दो, देखो अन्योन निमित्त के कारण ऐसा, आत्मा के परिणाम के अनुसार निमित्त लेकर के ऐसे कर्म डेप्थ में और ऐसे स्थिति को ऐसे अनुभाग को लेकर के बंध जाते हैं, जिसका अनुभाग उदय में जब आता है भगवान प्रशस्त आ जाते हैं अनुभाग यदि उदय में, तो नींद लग जाती है। प्रशस्ति यदि अनुभाग उदय में आ जाए तो नींद लग जाती, सुख की नींद बोलते हैं उसको दुनिया में, इसको सुख की नींद बोलते हैं। सुख की नींद किसको बोलते हैं? जिसमें प्रशस्त अनुभाग उदय में आ जाए तो सुख की नींद, चैन वो ही सुख की, और दुख की नींद में नींद ही नहीं आती, सब लोग सो जाएं और वह अकेला ही बैठा बैठा वेदना के कारण, घड़ी चलती नहीं उस समय क्यों घड़ी चलती नहीं उस समय, क्या हो रहा है? उल्टा काटा पर नहीं चल रही, एक घंटा हो जाता तो 10 घंटे होना चाहिए ऐसा लगता, एक एक घंटा आधा आधा घंटा है, 5-5 मिनट, हे भगवान कितनी बड़ी रात है ये। हाँ, सागरोपम आयु को भी सुख की नींद के साथ यूं ही निकाल करके आ जाता, और यहां पर एक रात में तो ऐसा, हे भगवान, हे भगवान क्या करेंगे? आप देख रहे हैं फिर भी कुछ हाथ नहीं लगा रहे हो, आपने कहा था जब हाथ लगाने की मेरे पास योग्यता थी उस समय तो हाथ मत लगाओ, मैं सब कर लूंगा, अब क्यों भगवान को कह रहे हो कि हाथ लगाओ? बोलो, जब हाथ लगाने की योग्यता रखते थे उस समय नहीं, हम अकेले आ जाएंगे, अच्छी बात, अब भगवान को याद क्यों कर रहे हो? अंतिम शरण भगवान है, जो व्यक्ति आदिम में शरण भगवान का लेता हो तो अंतिम शरण में भी मिल सकते हैं, जब वो चले गए अब बुलाने से आते नहीं हो, जब थे जा रहे थे कुछ काम हो तो बताओ, तो नहीं किया। अन्योन निमित्तेण दो परिणाम ज्ञान दो, एक दूसरे के परिणाम इस प्रकार होते ही चले जाते हैं। ये देन कारणेन दुकत्ता आदासेन भावेन पुग्गल कम्म कदानम न दुकत्ता सब भावानम एव। इस प्रकार यही एक कारण है कि आत्मा कभी भी अपने भावों के ही कर्ता हो सकता है, पुद्गल कर्मों के वह कर्ता नहीं हो सकता, कोई भी कर्म के भावों का कर्ता वह आत्मा नहीं हो सकता है, यह ऐसा गाढ़ सिद्धांत है। इंद्रधनुष का एक उदाहरण दे देते हैं तो आप लोगों को ज्ञात होगा, संभव है कि इस कार्यक्रम में भी आ भी सकते हो। इंद्रधनुष का उदाहरण ने दिया, इंद्रधनुष के निर्माण में क्या क्या आवश्यक हैं? इसको हम थोड़ा सा देख ले। इंद्रधनुष प्राय करके जिस ओर सूर्य रहता है उससे विपरीत दिशा में पड़ता है, एक इसका सिद्धांत है। पश्चिम की ओर यदि सूर्य है तो इंद्रधनुष का निर्माण होगा तो पूर्व की ओर ही होगा, और पूर्व की ओर यदि सूर्य है तो पश्चिम की ओर ही इंद्रधनुष होगा। थोड़े बहुत प्लेस जो है ना उत्तर की ओर भी खिसक सकता और दक्षिण की ओर सकता, वो जैसा होता है, लेकिन विपरीत दिशा की ओर ही उसका निर्माण क्षेत्र होता है। अब केवल सूर्य के उदय में ही ऐसा होता ऐसा नहीं, सूर्य के उदय के बिना यह नहीं होता ऐसा नियम है। किंतु और कौन सी सामग्री चाहिए? सूर्य के प्रकाश के सामने वर्षा हो और इस वर्षा में से उस रिफ्लेक्शन जो है सूर्य का इस विपरीत दिशा में जब आ जाता है उस समय इंद्रधनुष का निर्माण होता है। वर्षा यहां है, सूर्य प्रकाश इसके पीछे है और इंद्रधनुष ठीक उस ओर मैलों दूर तक है, वहां पर पड़ा। इसमें भी निमित्त नैमित्तिक संबंध है। केवल सूर्य प्रकाश हो तो भी इंद्रधनुष न हो, और केवल सूर्य प्रकाश के अभाव में वर्षा हो तो भी इंद्रधनुष नहीं, ये होता है। अब जब वह पड़ गया तो वहां के जो पुद्गल वर्गनाएं हैं वो उन सात रंगों के रूप में परिणत हो जाते हैं, न ही पानी और न ही सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश के बिना तो नहीं और पानी के बिना भी नहीं, लेकिन सूर्य के प्रकाश और पानी में इंद्रधनुष नहीं है, किंतु वहां के रहने वाले जो पुद्गल वर्गनाएं हैं वो इंद्रधनुष के रूप में परिणत हो जाते हैं। तो इसी प्रकार इंद्रधनुष जहां पर निर्माण हो गया वहां पर जो पुद्गल वर्गनाएं हैं, उसी प्रकार हमारे आत्मा के प्रदेश पर इंद्रधनुष का निर्माण, कर्म रूपी इंद्रधनुष का निर्माण हो गया। तो कब हो गया? एक तो कर्म का उदय यह सूर्य के उदय की भांति है, और ये उस उदय के साथ हमारे परिणामों में योग और मोह की वर्षा। ये सब बातें समझ लो भैया, समय तो नहीं हो रहा है, हो रहा है लेकिन इसको समझ लो, नहीं तो और गड़बड़ हो जाएगा, अधूरा विषय न रहे। कि हमारे आत्मा के प्रदेश पर कर्म रूपी इंद्रधनुष का निर्माण कब होता है? कर्म का उदय जो पूर्व में बंधा था वह उदय में आ गया, वह सूर्य के प्रकाश की भांति अपना काम करता है, उस प्रकाश का रिफ्लेक्शन हमारे आत्मा के प्रदेशों के ऊपर पड़ जाता है, उसके साथ साथ हमारा वर्तमान में परिणाम क्या होता है? परिणाम मोहादिमय हो जाता है। मोहादिमय हुआ ही नहीं तो नूतन कर्म बंध वहां पर हो गया, इसी का नाम इंद्रधनुष है। अब यह प्रक्रिया मोह और योग के साथ दसवें गुण स्तन तक चलती है, और इसके उपरांत 11वें और 12वें और 13वें गुणस्थान में मोह के अभाव में भी केवल शरीर नाम कर्म के उदय से, ये शरीर नाम कर्म का उदय सूर्य प्रकाश की भांति आप में उदय को प्राप्त हो गया। जो ही होता है त्यों ही हमारे आत्मा के प्रदेश में स्पंदन होता है, और स्पंदन को ही यहां पर हम वर्षा का नाम दे दें, इसको बोलते हैं भाव बंध या भाव आश्रव। जो ही हुआ तो ही नूतन साता के योग्य जो कर्म वर्गनाएं थी वह कर्म के रूप में परिणत हो गया, एक समय के लिए इंद्रधनुष का निर्माण हो गया और वह चला गया। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद केवल ज्ञान जिसे उत्पन्न हुआ और पूर्व कोटि मान लो आयु है, तब तक ये एक एक समयवर्ती एक एक समयवर्ती इंद्रधनुष का निर्माण उसका हो रहा मिट रहा हो रहा मिट रहा हो रहा मिट रहा ये जारी है, क्योंकि वह कर्म रुकता ही नहीं, वहां पर चला जाता है। लेकिन योग निरंतर बना रहता है, कभी वह मनोयोग कभी वह वचन योग कभी वह काय योग, ये चला रहता है। खुले खुले आसमान में बादल यदि नहीं है तो इंद्रधनुष कभी आपने देखा है? खुले में नहीं होता। इसी प्रकार योग रहित प्रदेश में इस प्रकार का नहीं होता। 14 गुण स्थान में बादल सब छट जाते हैं। कौन से? जो शरीर नाम कर्म का उदय वहां पर समाप्त हो जाता है तो आसमान बिल्कुल निरभ्र हो जाता है, और निरभ्र आकाश में कभी इंद्रधनुष का निर्माण नहीं हुआ कर। इस प्रकार बादलों की घटाओं के साथ 13वें गुणस्थान तक इंद्रधनुष का निर्माण और 14 गुणस्थान में अभ्र का अभाव, कर्म का उदय तो है लेकिन वहां वह उदय कभी भी इंद्रधनुष का निर्माण नहीं कर सकता। शरीर नाम कर्म का उदय ही अनिवार्य है, उसके अभाव में कभी भी औदय या बंदय रहा, इसी को बोलते हैं यह औदय कर्म। शरीर नाम कर्म के उदय से नाम कर्म का उदय है, वह भी बंद का कारण है, योग के लिए कारण है और योग उसके लिए कारण, तो वह प्रकारांतर से यही कारण हो जाता है। ऐसा यह निमित्त नैमित्तिक संबंध है, अनंत शक्ति को लिए हुए वे सर्वज्ञ देव भी 13वें गुणस्थान के अंतिम समय तक वह इंद्रधनुष को रोक नहीं पा रहे हैं। योग को नहीं रुकता, इसलिए पर्व के दिनों में ये कहा था सम्यक योग निग्रहो गुप्ती। गुप्ती दो प्रकार की हुआ करती है, एक पापाश्रव को रोकने रूप गुप्ती और एक पुण्याश्रव को रोकने रूप गुप्ती। अभी की जो गुप्ती है यह पुरुषार्थ मूलक है, और उस समय के जो गुप्ती है वह पुरुषार्थ मूलक नहीं। वह 13वें गुणस्थान में जब सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाद के यदि ध्यान कर लेता तो 14वें गुणस्थान में जाकर के उसका निग्रह हो जाता। इस प्रकार यह गुप्ती यतः संसार कारणात आत्मानं गोपयति सा गुप्ती, ऐसा सर्वासिद्धि का उल्लेख है। चूंकि जिससे आत्मा को संसार के कारणों से बचा देती है उसका नाम गुप्ती है, उस गुप्ती को ही संवर कहा है, सह गुप्ती समिति धर्मान प्रेक्षा आदि आदि। इसलिए अशुभ को पहले रोको, शुभ को बाद में रोको। अशुभ प्रकृतियों को रोकने के लिए 10वें गुणस्थान तक जो गुप्ती होती है वह अशुभों के संवर के लिए कारण हो जाती है, और 11वें 12वें और 13वें में जो साता का आश्रय होता है उसको रोकने के लिए 13वें गुणस्थान के अंत समय तक योग रहता है तो वह रुक नहीं पा रहा। 14 गुणस्थान में जो गया वहां पर योग का निग्रह हो जाता है तो साता का आश्रव भी रुक जाता है। इस प्रकार यह इंद्रधनुष का उदाहरण आप याद रखेंगे। समय आपका हो गया, 3 गाथाओं की व्याख्या हो गई।